No.
Om Shanti. पहले पहले तो बहुत बहुत थैंक्स राजू भाई को, जब भी मुरलीधर की मुरली पढ़ते हैं तो एक बहुत क्लीन क्लियर सरल भाषा आती है ना सभी को, नहीं? So, बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा राजू भाई, कई भाई बहनों से ऐसे दो तीन प्रश्न आए हैं तो हम थोड़ा आधे घंटे में, इट विल बी अ वैरायटी क्वेश्चन आंसर सेशन। तो पहला प्रश्न जो हम पूछना चाहते हैं, आज बाबा ने मुरली में एक मत की बात उठाई और कल आपने अपने क्लास में योग की बात जब उठाई थी तो आपने भावना के संबंधित योग की परिभाषा बताई थी। ये जो एक मत की बात है, जो हम सब अपने आप को आत्मा समझे, उसकी भावना कैसी बने रहे? क्योंकि जब तक इस बात की फीलिंग की स्वमान नहीं होती है तब योग भी टिकता नहीं है, हम समझते। एक बहन का प्रश्न था कि स्वमान की जो कमी होती है, भावना होती है लेकिन स्वमान की कमी साथ साथ महसूस करते हैं, तो इसको मिटाने के लिए क्या करना है?
ओम शांति। बाबा ने हम सबको समय प्रति समय बहुत सारे स्वमान स्मृति में दिलाए हैं और बाबा कहते हैं जो बाबा के टाइटल हैं संगम युग पर यही आपका स्वमान है। और टाइटल्स कितने हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में शिव बाबा के अनेक टाइटल्स नाम लिखे होते हैं, कर्तव्यवाचक। तो हम सब कुछ स्वमान रोज स्मृति में रखें जिससे हमारी भावनाएं भी बनी रहें और योग भी सहज लग जाए। कुछ स्वमान, सभी स्वमान तो याद नहीं रहेंगे लेकिन मैं आपको 5 स्वमान याद दिलाता हूँ बहुत सहज सरल भाषा में। अगर इसका अभ्यास करेंगे तो अभ्यास में इसमें भावनाएं भी हैं और योग भी है। एक है, बाबा कई बार कहते हैं मैं मस्तक मणि हूँ, मस्तक के बीच में चमकती हुई एक मणि के समान बहुत वैल्यूबल रतन हूँ। तो जब हम अपने आप को मस्तक मणि समझते हैं तो ऐसे कई बार अनुभव होता है कि बाबा भी मेरे मस्तक के साथ मणि के साथ आके बैठ जाता है। ये अभ्यास करना। एक मुरली बाबा की चली थी कुछ दिन पहले, अव्यक्त बाबा की डिवाइस मुरली थी, बच्चे तुम मास्टर त्रिमूर्ति हो। और मास्टर त्रिमूर्ति में बाबा ने कहा कि आप बच्चों के फेस से, चेहरे से लोगों को बाप का दर्शन होना चाहिए। और उसका बहुत सुंदर अभ्यास आप योग में करना कि मैं मस्तक मणि और बाबा की दोनों मणियां, बाप और दादा यहाँ आकर के बैठ गए, जैसे दादी जी के तन में आते हैं जब गुजार दादी के तन में, तो 3 आत्माएं हो जाती हैं, दादी की तो है और बाप दादा आकर के बैठ जाते, त्रिमूर्ति हमसे मिलता है आके। पहले दादी कुछ समय बाबा का जो अव्यक्त पाठ चलता था उसमें दादी कहती थी मैं मर्ज हो जाती हूँ, सो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। कि लास्ट में 2-3 साल, बीच में भी 1-2 बार हमने अनुभव किया था कि दादी को बाबा सुलाता नहीं है, दादी होती है और बाप दादा आ जाते हैं। और इस 2 साल पहले की जो बाबा की पाठ चला, 1.5 साल 2 साल, उसमें आपने देखा हो कि बाबा बोलते बोलते दादी बोलने लगती थी, बीच में बड़ा मुश्किल होता था मुझे सेट करना कि ये दादी के शब्द हैं, ये बाबा नहीं बोल सकता है। तो दादी से मैंने खुद पूछा, दादी ये कैसे, ये लगता आपका शब्द है, बाबा का शब्द नहीं लगता है। तो दादी कहती थी, अभी मैं सोती नहीं हूँ, अभी मैं जागृत होती हूँ और बाबा जब नहीं बोलता तो मैं बोल जाती। तो ये त्रिमूर्ति का जो रोल है, हम सब योग अभ्यास में जब आत्मा मस्तक मणिष देवान से डिटैच हो जाती है तो हम बाबा को अपने साथ बिठा लें, ऐसे प्यार से बाबा को कहें, बाबा ये तख्त जो है ना बहुत साफ है, स्वच्छ है, इसमें कोई के लिए कुछ भी बात नहीं है, गंदगी बहुत साफ स्वच्छ निर्मल, क्योंकि तो बाबा तो आएगा तो ऐसे स्थान पर ही आएगा ना। तो ये अभ्यास आप करके देखना कि मैं मस्तक मणि हूँ और बाप दादा का आह्वान किया और यहाँ पर दोनों आत्माएं आ गई, फिर ऐसे दृष्टि दे, ऐसे योग करें, लोगों को अच्छे अनुभव होंगे। इसका मैं बहुत अभ्यास करता हूँ, योग ऊपर करके जाना, ऊपर जा करके मेहनत करना, बाबा को ढूंढना, बाबा को क्यों नहीं बुला लिया जाए अपने पास। तो ये बहुत अच्छा भावना भी है इसके अंदर, प्यार भी है और बहुत सहज योग का अभ्यास है। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ, बाप दादा मेरे साथ है, कंबाइंड है। दूसरा समान है जो परसों बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा कि सौगात देता हूँ आप नूरे रतन हो। मैं नूरे रतन, बाबा इस ज्योति के बीच, आंखों के बीच जो बिंदु है वो भी उसी स्वरूप में है और मैं आत्मा भी बाबा के नैनों का नूर और इस नैनों में बाबा को बसाने वाली नूरे रतन हूँ। कहते हैं ना बहुत प्यार होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, ये बच्चा मेरे नैनों में रहता है। तो बाबा को हम अपने नैनों में बसा के रखें, कहते नजर किसी की नहीं लगेगी और इस नजर से निहाल करने की हम सेवा कर सकेंगे अगर हमारे नैनों में बाबा बसता है तो। तीसरा बाबा कहता है, बच्चे मैं दिल तख्त नसीन, दिल तख्त पर बाबा को बिठा दो, हम बाबा के दिल तख्त नसीन और बाबा हमारे दिल में आके बैठ जाए, दिल तख्त नसीन। वास्तव में दिल ये कोई शरीर के हार्ट की बात नहीं है, ये मन की भावनाएं ही हैं जो दिल कहलाती है। मन के बहुत सारे रूप हैं, चित्त है, भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, सब मन के अलग अलग रूप हैं। तो इस दिल में बाबा को हम स्थान दें तो दिल तख्त नसीन, मैं आत्मा बाबा को इस दिल तख्त पर बिठा दूं, ये तीसरा सोमान है। और चौथा है कि मैं बाबा आपकी राइट हैंड भुजा हूं, जो बाबा का कार्य है उसके लिए मैं आगे रहूं। स्थापना के कार्य में विशेष हमारा बड़ा रोल राइट हैंड के रूप में रहे। और पांचवा, मैं बाबा आपके साथ कंबाइंड हूं, शिव शक्ति के रूप में कंबाइंड है, पांडव पांडव पति के साथ कंबाइंड है, अलग नहीं है। तो ये पांचों समान, मस्तक मणि हूँ, नैनों का नूर हूँ, दिल तख्त नसीन हूँ, राइट हैंड हूँ और कंबाइंड हूँ, मैं समझता हूँ इस समान से बहुत सहज योग लग जाएगा। लेकिन इसको रिवाइज करो, स्मृति में रखो, अमृत वेले आँख खुलती है, बाबा के वतन से आके मैं मस्तक मणि आत्मा इस शरीर में प्रवेश हुई हूँ। भिन्न भिन्न रूप से इसका प्रैक्टिस करेंगे तो योग से
वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। जो भावना स्वमान दोनों एक साथ में आ जाती है,
भावना तो चाहिए, भावना के बिना बाबा को याद करेंगे ना। तो एक दिन की बात सुनाता हूँ, हमारी दीदी मनमोहिनी बहुत रमणीक थी और योग कराती थी तो सबके ऊपर नजर जाती थी कैसे योग करता है। तो एक दिन मेरे को बुलाया कि तुम योग कैसे करते हो, मैं दीदी जैसे सब करते हैं। तो बोली सब कैसे करते हैं, हमने दीदी को यह शिक्षा हमको जरूर देगी। तो दीदी ने कहा कि बड़ा सूखा सूखा लगता है, चेहरे पर कोई रौनक नहीं दिखाई देती, चेहरा सूखा क्यों रहता है जब योग करते हो, चेहरे पर रौनक आनी चाहिए, तुम गोपी बन के योग किया करो, उद्धव बन के नहीं किया करो। उद्धव और गोपी का अंतर तो समझ आया ना, कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आया था। उद्धव बहुत ज्ञानी था और ज्ञान के कारण भगवान को बहुत ऊंची नजर से देखता था। अरे भगवान और ये गोपियां क्या कर इसको नचा रही हैं, इसकी मटकी फुड़वा रही है, तो उसको बड़ा चिर लगती थी, गुस्सा आता था। तो उसको लगता था कि ये तो पहचानती नहीं इसको, और गोपियां उसके साथ डांस करती थी, खेल का पाल करती थी। तो दीदी ने कहा, दीदी का नाम भी गोपी था, अरे बाबा को प्यार करो, खो जाओ बाबा के प्यार में, आंसू आ जाए, गीले हो जाए नैन, और इतना चेहरे पर खुशी दिखाई दे, उसको योग कहा जाता। सूखे सूखे ऐसे बैठे हैं ऐसे ऐसे।
वेरी गुड स्टोरी, थैंक यू। अच्छा अभी थोड़ा दूसरा डायरेक्शन हम लेते हैं। हमारी लिज बेन ने कल ये प्रश्न पूछा था, थोड़ा चिटचैट चला था कैफे में। तो भक्ति मार्ग में शिव की पूजा जब होती है, अव्यभिचारी होती है, लिंग की पूजा शुरू होती है, फिर वो जब प्रश्न ये था कि शिव शंकर कब बना, शिव शंकर दोनों को कब मिलावट, और उसकी यादगार क्या है, मींस हमारे संगम युग में हिसाब से, क्योंकि जब शिव शंकर को दिखलाते हैं तो पार्वती को भी दिखाते हैं, कार्तिकेय को भी दिखाते हैं, गणेश को भी दिखाते हैं, जैसे परिवार रूप में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं तो सिर्फ ऐसे ही लक्ष्मी नारायण को दिखाते बिना बच्चे, लेकिन शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय को दिखाते हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ कि पहले शिव की पूजा अव्यभिचारी, फिर शिव शंकर माना देवता में रूम, ये शिफ्ट कैसे हुआ, और अभी के समय के हिसाब की कौन सी माना उसका यादगार कैसे बना। इज दैट इट ले?
अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पहले पहले तो बाबा का ही साक्षात्कार हुआ, तो भक्ति जब शुरू हुई है तो भक्ति का आधार रहा है साक्षात्कार। तो जो बाबा का रूप बाबा लोगों ने देखा, ज्योति बिंदु, तो उसको एक स्टैंड पर बना के पूजा करना शुरू किया। लिंग रूप तो था ही नहीं, वो तो ज्योति का ही साक्षात्कार था, लेकिन ज्योति की पूजा कैसे करेंगे। बाबा कई बार सुनाते हैं कि ज्योति की पूजा कैसे करेंगे, तो उन्होंने एक स्टैंड बनाया और उस स्टैंड पर उस रूप को रख करके लिंग के रूप में उसकी पूजा शुरू कर दी शिव बाबा की। लेकिन किसी के पास इसका ज्ञान नहीं था, ये है क्या चीज। तो उन्होंने एक भक्ति के अंदर उसको अलग रूप में दिखाया कि इसकी माताओं को पूजा नहीं करनी चाहिए, उसको एक इंद्रिय दिखा दिया। कुछ कहानियां हैं शास्त्रों में इसके विषय में, बहुत डिटेल में है, लेकिन वो एक स्थूल अंग दिखाना शिव बाबा के रूप को, तो कुछ विद्वानों ने, कुछ एक संतों ने उसको रूप बदल दिया, उसके साथ मेल का रूप दे दिया शंकर को, कि ये जो है शंकर ही शिव है। ये ऋषि मुनियों ने गलती की है, लेकिन गलती इसलिए की है कि उसके रूप का परिचय नहीं था, ये ज्योति है, ये बिंदु है, परिचय न होने के कारण उन्होंने उसको इंद्री का रूप दिया, लिंग का रूप दिया, और कह दिया कि ये व्यक्ति है, उसका ये स्थान है। बहुत सारा शास्त्रों में घोटाला हुआ है बाबा के दल, घोटाला कर दिया लोगों ने, तो इसलिए उसको एक परिवार का रूप दे दिया शिव शंकर, क्योंकि शंकर का कोई भी पार्ट नहीं है। जो बाबा ने साक्षात्कार कराया, आत्मा एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन पुरियां जो दिखाई सूक्ष्म तन की, इसको स्पष्ट बाबा ने नहीं किया पहले पहले। सभी ने समझा ये तीन आत्माएं हैं, सूक्ष्म तन है, लेकिन फिर धीरे से अव्यक्त रूप में जब बाबा अव्यक्त हुए हैं, तब इसको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा की तपस्या से कलयुगी सृष्टि का विनाश होता है, तपस्या से विकर्म विनाश होते हैं और पुरानी सृष्टि का नाश होता है। तो ब्रह्मा की तपस्या का ही स्वरूप शंकर है, शंकर कोई अलग आत्मा नहीं है, लेकिन उसको शिव के साथ इसलिए मिला लिया कि वो जन्म मरण में नहीं आया है, व्यक्ति ही नहीं है तो आएगा कहां से जन्म मरण में। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु ही शंकर। और ये बाबा ने जब साक्षात्कार से त्रिमूर्ति का चित्र बनाया था, आप पुराना त्रिमूर्ति चित्र देखेंगे तो उसमें तीनों के अंदर सकल ब्रह्मा बाबा की है, ये साक्षात्कार कराया बाबा ने पहले, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया। फिर धीरे धीरे ज्ञान खोला कि एक ही आत्मा है और एक आत्मा के तीनों स्वरूप हैं। ब्रह्मा स्थापना कर रहा है संगम पर, फिर इसकी तपस्या से कलयुग का विनाश होता है शंकर के रूप में, जैसे आंख खुली तपस्वी संपूर्ण बना, विनाश हुआ परिवर्तन हुआ, और फिर जब ये आत्मा जन्म लेती है तो विष्णु बनकर के पालना करती है। तो लोगों ने शिव को और शंकर को भेद को अंतर को समझ नहीं पाया भक्ति में, इसलिए समझ दिया शिव ही शंकर है, शंकर ही शिव है। जबकि कभी भी मूर्ति के आगे जाते हैं, शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, कभी शिवरात्रि को शंकरात्रि नहीं कहते, ओम नमो शिवाय को ओम नमो शंकराय नहीं कहते, शिवलिंग को शंकरलिंग नहीं कहते, शिव कल्याणकारी संस्कृत में उसका अर्थ है, शंकर उसका विनाशकारी अर्थ है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी भक्तों ने भूल की है और उसको एक कर दिया। क्यों क्यों किया है? उसका कारण यही रहा, क्योंकि शंकर का कोई रोल नहीं रहा है।
शंकर का रोल नहीं रहा है, लेकिन उसको रूप क्यों दिया गया है, फॉर्म क्यों दिया गया है? क्योंकि तपस्या एक एनर्जी होती
नहीं है। फॉर्म इसलिए दिया, ये अशरीरीपन की निशानी है। कैसा फॉर्म दिया है देखो, कोई उसको ड्रेस नहीं दिखाई है। ऐसे शंकर के गले में सांप दिखाए हैं, विकारों पर जीत की निशानी दिखाई है, गंगा उसकी जटाओं में दिखाई है। ये एक अलंकारिक रूप दिखाया गया है, अलंकारिक रूप है, कोई देहधारी शंकर नहीं दिखाया है। जो धारणाएं ब्रह्मा बाबा की नेचुरल रही हैं, शिव बाबा को उतारा है, उसके मस्तक में भगीरथ के अंदर प्रवेश हुआ है, शंकर के ऊपर चांद दिखा दिया है, शीतलता है, फिर गंगा दिखा दी, उसके मस्तक के ऊपर गंगा उतारी, तो कई ऐसे चिन्ह शंकर प्रतीकात्मक कहते हैं, ये चिन्ह है, बाकी कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है। और बैल पर कोई सवारी करेगा क्या? बैल पर बैठा हुआ, बैल पर सवारी। अब बाबा शिव बाबा बैल पर आया, ब्रह्मा के रथ में आया, उसको उन्होंने स्थूल रूप दे दिया है। ये भक्ति के अंदर साक्षात्कार स्पष्ट न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण मिक्स किया गया है। अब बाबा ने स्पष्ट किया है संगम पर।
You can ask him now if you want. Okay, all right. So Shankar always एक ध्यान के रूप में दिखाया है,
तपस्या का रूप,
तपस्या का रूप में, और वो ही प्रेरणा
है, अशरीरी है, विकारों पर विजय प्राप्त की है, उनकी सब की निशानी एक सिंबल रूप है, चिन्ह है।
तो अभी आपको क्या फीलिंग आती है कि बाबा ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन वासी है, तो कौन सी ऐसी साइंस है कि उसने शंकर का रूप लिया है? क्या है प्रैक्टिकल में, क्या दिखाई देता है रूप का?
अभी बाबा की तपस्या से तो विनाश होगा, संपूर्ण तो आत्मा बन गई है, लेकिन ये जो तपस्या का स्वरूप है ब्रह्मा बाबा की, अभी बैठा है तपस्या के रूप में, अभी अभी पार्ट भी पूरा हो रहा है, व्यक्त पार्ट भी, तो ये जो बाबा का रूप अभी है वर्तमान समय, ये शंकर के रूप में ही जैसे बाबा अभी सृष्टि का परिवर्तन करेगा।
मैंने बिल्कुल साक्षी हो गए हैं बाबा,
बिल्कुल साक्षी है समय, क्योंकि बच्चों पर छोड़ दिया सब कुछ, अभी गाइड नहीं करेगा, इशारा भी नहीं देगा, जब जो सुनाना था सुना दिया। अभी सूक्ष्म टचिंग, बुद्धि की लाइन क्लीन है, क्लियर है, तो बाबा की टचिंग जरूर मिलेगी। शिव बाबा का पार्ट तो अलग है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का ये तपस्या जो अभी साक्षी होना, बहुत बड़े परिवर्तन की निशानी है। जो बाबा कहता है ना कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा पाएगा, वो पार्ट अभी चलेगा। अगर कोई श्रीमत की अवज्ञाएं की हैं, उल्लंघन करेगा, तो उसकी उसी समय उसको सजा है। और शंकर के रूप में जैसे साक्षी होकर के तपस्या में बैठ गया और उसकी दिव्य नेत्र से सृष्टि परिवर्तन होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी हर एक का चिंतन अपना हो सकता है।
नहीं तो क्या बाबा साक्षी बन गया है, लेकिन मदद तो करेगा ना?
मदद तो सूक्ष्म करेगा, जिनकी बुद्धि क्लीन है, क्लियर है, संबंध बहुत सच्चा है, तो उन्हें उनको मदद करेगा, सबको तो नहीं करेगा।
अच्छा अच्छा प्रश्न है किसका, बोलो। क्या
तांडव?
आप दोबारा प्रश्न रिपीट करो ना।
तांडव नृत्य कहते हैं, शंकर ने तांडव नृत्य किया और अर्ध नारेश्वर के रूप में उसका नृत्य दिखाया है, आधा नर आधा नारी का रूप दिखाया है। तो तांडव नृत्य का अर्थ यही है कि जब वो विनाश लीला है, वो तांडव की तरह माना भयानक है, बहुत भयानक रूप में जैसे वो नृत्य कर रहा है, सब विनाश हो रहा है, तो वो विनाश के दृश्य का ही वो नृत्य का रूप दिखाया है। प्रकृति पर विजय है, वो अपने समान में है और उसके नृत्य से जैसे परिवर्तन हो रहा है। डांस दिखाते हैं ना, जैसे ऊपर हो करके, पैर ऊपर है, उसका कोई उसके लेना देना नहीं है, ऊपर है और उसके नृत्य से सृष्टि परिवर्तन हो रही है। तांडव बहुत भयानक विनाश होगा। याद नहीं तो कैसे रिपीट करें?
तो कैसे रिपीट करें? मंडे का वरदान क्या था? आप थोड़ा वो पहले ढूंढो, फिर प्रश्न। अच्छा लिज, यू हैव अ क्वेश्चन, समथिंग्स क्लियर?
वो ढूंढ लो पहले, सोमवार सोमवार कल ही तो था परसों।
ये पहले ढूंढ ले, दोबारा प्रश्न, दूसरा प्रश्न ले ले। हाँ ये बात समझती है कि पूरी त्रिमूर्ति का जो रोल है वो ब्रह्मा बाबा का ही अलग अलग रोल है। त्रिमूर्ति समझ गई, जैसे नृत्य समझ गई।
ये तो भक्तों ने मिक्स किया ना, हमने थोड़ी मिक्स किया।
हाँ ओके, तो लेकिन ये जो क्लियर,
क्योंकि उसका ज्ञान नहीं था ना, समझ नहीं थी ना कि शिव कौन है, शंकर कौन है।
लेकिन उसका क्या कहने का भाव है कि भक्तों ने किस आधार से मिक्स किया है?
वो साक्षात्कार हुआ उनको, और साक्षात्कार का रूप समझ नहीं पाया। जैसे आज संदेशिया जाती है ना, अपने अपने अर्थ से ऊपर के दृश्य दिखाती है, बताती है, जैसी उनकी बुद्धि है वैसी टचिंग आती है। तो संतों को उस समय जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, तो उनको जिस प्रकार की महसूसता हुई, साक्षात्कार हुए, और वो साक्षात्कार के आधार से वो समझ, जो जितना समझ सके उतना उन्होंने बताया है, और उसके आधार से शास्त्रों में लिख दिया। तो मिक्स किया है उस समय के ऋषियों ने, मुनियों ने, द्वापर के अंदर। सत्युग त्रेता में इसकी बात नहीं है।
अच्छा
ये बात
बोलो,
मैं बोलूं? प्रश्न। अच्छा, इसमें है दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वालों वाले स्वपरिवर्तक भव। स्व को परिवर्तक करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए, अपनी कमजोरी की महसूसता और जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण जो ज्ञान स्वर को स्वयं को पास होंगे तो श्रेष्ठ संकल्प की महसूसता की स्थित स्वस्थिति।
ले लो, मैं पढ़ के सुन अर्थ हो जाएगा।
मैंने दो बातें हैं,
मैं समझ गया, दूसरी बात नहीं समझ में आई होगी। पहली तो है स्व की महसूस, तो सब समझ गए, क्योंकि स्व की कमजोरियों की महसूसता को सभी समझते हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति आई उसके पीछे राज क्या है, क्यों आई मेरे आगे? पेपर आया तो कई उस पेपर में क्वेश्चन उठाने लगते हैं, ऐसा क्यों मेरे साथ आया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन कुछ तो किया होगा। मान लो आज हमारे आगे कोई शरीर का ही पेपर आया, संबंधों में टकराव का पेपर आया, कोई कारण बना, तो परिस्थिति जो आई है उसकी महसूसता चाहिए कि क्यों आई, पिछले जन्मों किया या इस जन्म में किया, कुछ तो किया है गलती, और किस कारण से आई है उसको महसूस करो। तो बाबा उसको कह रहे हैं, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं हमारे स्थिति को बिगाड़ने के, उनकी इच्छा, उनका क्या चाहते हैं मेरे से, उनके मन की भावना, भाई ये अगर मेरे आगे कोई विघ्न रूप बन रहे हैं या कोई कारण बन रहा है तो हम उसको महसूस करें, क्या इनको चाहिए मेरे से। अगर कोई महसूस कर लेगा ना तो अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर लेगा। महसूस ही नहीं करता व्यक्ति को, मान लो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, और आप कहते नहीं मैं बिल्कुल राइट हूँ, मैं क्यों किसी के आधार से इनकी बात को सुनूं, तो वहां टकराव की स्थिति पैदा होती है। अब परिस्थिति है, उस व्यक्ति की कुछ इच्छाएं हैं, वो चाहता है, निमित्त जो है, बाबा निमित्त शब्द यूज कर रहा है, निमित्त माना हमारे जो दीदियां हैं, दादियां हैं, बड़े हैं, हमसे क्या चाहते हैं, कम से कम उसको महसूस तो करें। अगर वो चाहते हैं और उसको हमने महसूस करके अपने को चेंज कर लिया तो ये है महसूसता। चाहते हैं कि ऐसे करें, ये अमृत वेले योग करें, ये अच्छा क्लास करें, अच्छा सेवा करें, इस बार बड़े क्या चाहें, यही चाहते हैं ना, तो हम समझते नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, हम राइट हैं, महसूस ही नहीं करते हैं। तो परिस्थिति या जो निमित्त आत्मा बनती है उसकी इच्छा क्या है, उसके मन की भावना क्या है, उसको समझना और समझ करके अपने आप को मोल्ड कर लेना, ये कहते हैं इसकी महसूसता।
इसकी जो एडिशन है कि खुद की कमजोरी की रियलाइजेशन भी होनी चाहिए,
वो तो पहला ही है,
पहला नंबर
पहला वो है, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा है जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनता है कोई पेपर लेने के लिए, उनकी इच्छा क्या है और उनके मन की भावना क्या है, उसको महसूस करना और उसके आधार से अपने को एडजस्ट कर लेना। परिस्थिति के पेपर के कारण को जाने, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता कि ये परिस्थिति आई है, इसमें मैं कैसे पास हो सकता हूँ। परिस्थिति है, माना कोई व्यक्ति, परिस्थिति माना दूसरे के द्वारा आ रही है, कोई हमारे मार्ग में रुकावट बन रहा है, कोई कारण बन रहा है, तो उसको हम महसूस करें और अपने आप को उसमें चेंज कर लें। पास होने के लक्ष्य, ऐसे नहीं फेल हो जाए उसमें, कोई ने मेरी इंसल्ट कर दी, कोई ने मुझे कुछ कह दिया। कभी कभी क्या होता है, कोई छोटी सी बात कह देता है ना, उसको सोच सोच करके इतना बड़ा रूप बना देते। उसी समय अगर महसूस करें भाई ये क्यों हुआ, अच्छा कहा है, कुछ कारण होगा। मैंने कल किसी को बोला कि आपने कोई बात को बहुत अंदर ले लिया, और अंदर ले लेते कहने वाला भूल जाता है कि मैंने इसको कुछ कहा था, और जिसको कहा गया उसको सोच सोच करके पहाड़ बना देता कि मेरे को बड़ों ने ऐसे क्यों कहा, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, इन्होंने किसी से सुनी सुनाई पर कह दिया, कोई ने मेरी कंप्लेन की, और उसको सोच सोच करके फिर नींद नहीं आती, फिर हार्ट में दर्द हो जाता, बीपी बढ़ जाता, कितना परेशान होते रहते। अगर मान लो कह दिया, कहने वाला भूल गया, आप उसको दूसरे तीसरे दिन जब देखते हो अभी मूड ठीक है और आपके संकल्प बहुत चल रहे हैं, आप सॉरी करके एक बार कहो, दीदी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे इस बात के लिए क्यों आपने मुझे ये कहा है, किस लिए कहा है, आप मुझे बताएं। हल्के हो जाओ, फिर आपको अगर कुछ बात उनके पास होगी तो जब उनका मूड देखो, स्थान देखो, उस समय बात करके हल्का कर लो। लेकिन कई लोग सोच सोच करके एक महीना, दो महीना, तीन महीना इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं अपने आप को, तो बहुत सारी बीमारियां पैदा कर लेते हैं। अधिकतर ब्राह्मणों को जो बीमारियां होती है ना, अधिक सोचने के कारण होती है, मन के ऊपर चला जाता, अंदर चला जाता, डायबिटीज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, यहाँ तक आजकल स्टॉक जो पड़ता है, जो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, ये सब क्यों हो रहा है, कोई बात सहन नहीं कर पाए, मेरे लिए ऐसा इन्होंने कर दिया, मेरी इज्जत ले ली, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, इन्होंने ऐसा किया, इसलिए। बाबा कहता है जैसे कह दिया आपने, उसने कहा, आपने सुनो समझो। हमारी दादी जानकी के बड़ा अच्छा शब्द मुझे ले, डोंट थिंक, डोंट थिंक, कितना समय तक यूज किया ये शब्द दादी ने, सोचो ही नहीं, कुछ भी है सब ठीक, अगर मैं श्रीमत के अनुसार ठीक हूँ तो कोई कुछ भी बोल रहा है मैं अपने को डिस्टर्ब ना करूं,
हम श्रीमत पर ठीक होंगे तो किसी की असर ही नहीं होंगी, कोई परिस्थिति की असर ही नहीं
हो रहा है। मन श्रीमत के कुछ तो विपरीत है, बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ ये मेरे से बिल्कुल गलत बोला गया, झूठ बोला गया, मेरी ग्लानी की गई, झूठ बोला इसने, इसलिए मेरे को ऐसे कहा गया, तो हम उसमें सहन करें, बहुत शांत होकर के धैर्यता के साथ उस पेपर को महसूस करें और व्यक्ति की इच्छा को समझ के अपने आप को चेंज करें, ये मैं सोचता।
राजू भाई वन लास्ट क्वेश्चन, 3 मिनट है, और एक बहन ने ये प्रश्न पूछा था कल और इसके संबंधित भी है कि संस्कार परिवर्तन की जब बात आती है
जी,
तो ये बहुत डिफिकल्ट बात है संस्कार को परिवर्तन करना, तो क्या संस्कार परिवर्तन होते हैं या सिर्फ टाइम के हिसाब से मर्ज हो जाते हैं?
वास्तव में टाइम के अनुसार मर्ज हो जाना भी परिवर्तन ही है। सतयुग और त्रेता के अंदर आत्मा में कोई भी भिखारी संस्कार नहीं है। हम सब जानते हैं कि सतयुग त्रेता के अंदर ये सब संस्कार, आत्मा में तो भरे हुए 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ है, लेकिन सतयुग त्रेता में फुल मर्ज है, और जब देह मान शुरू हुआ बॉडी कॉन्शियस में हम आए तो वो संस्कार इमर्ज होने लगे। तो संगम पर जब हम योग करते हैं तो पावरफुल योग से वो संस्कार एकदम बिल्कुल मर्ज हो जाते, उसको ही कहते बाबा समाप्त हो गए, संस्कारों का संस्कार कर दिया, जैसे वो याद भी ना आए।
कई बहनें कहती है कि कभी कभी, क्योंकि कल ये चर्चा चली डाइनिंग टेबल पे, तो दो बहनें ने बताया कि हम योग करते हैं लेकिन हम जितना पावरफुल योग करते हैं फिर दिन में हमको माया भी इतना धोखा दिला देती है, तो ये क्यों होता है? तो फिर योग ना करना वो भी बेहतर है ना।
बाबा कहता है जिस प्रकार का पावरफुल संकल्प करते हो आपको महसूस होता है कि यही पेपर आया, क्योंकि आपकी महसूसता की शक्ति बढ़ जाती है। पेपर तो रोज आते हैं, लेकिन उस दिन खास बुद्धि में बात याद है, पावरफुल योग किया है, संकल्प हमने किया है, तो उस संकल्प की महसूसता होती है कि ये गलत हुआ है, ये हो रहा है मेरे आगे। वास्तव में हम सबको योग के द्वारा इन पेपर्स का आह्वान करना चाहिए, आए हमारे आगे, हम पास होंगे या नहीं होंगे डरो नहीं इनसे, आह्वान करो। बाबा कहता आह्वान करो, पास होके दिखाओ। तो पेपर अगर आ रहे हैं तो क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझो नहीं, बाबा साथी है, सर्वशक्तिमान साथ है, बात आई है, पास हो जाएंगे और क्लास आगे बढ़ जाएंगे। सबके आगे आता है, किसके आगे नहीं आता है, जिस दिन जो संकल्प करो वही पेपर आता है, लेकिन पास होके दिखाना है। तो संकल्प अगर किया है, दृढ़ता से संकल्प किया है, तो पेपर आएगा, मुस्कुराएंगे, बाबा साथ है, देखो हमने संकल्प किया था, ये बात आई है, अब मुझे ऐसे इसको पार करना है। तो उसमें सहनशीलता के साथ धैर्यता की शक्ति बहुत चाहिए, तुरंत उतावला पर नहीं चाहिए। कई लोग बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते, मूड खराब कर लेते, खुशी गायब हो जाती, अच्छा नहीं लगता व्यक्ति, बात नहीं करते, ऐसा करने की बजाय थोड़ा शांति से सरलता से चेंज करो अपने को। बात तो सबको करना ही है ना।
थैंक यू, थैंक यू। यस
चलो अच्छा है, लंदन में आज हमारा विदाई का भी दिन है, क्योंकि कल सवेरे हमें 6 बजे यहाँ से निकलना होगा, 9:30 की फ्लाइट है। तो आज आप सबसे मिलके छुट्टी लेके ड्रामा अनुसार लंदन आना हुआ, ड्रामा अनुसार, कुछ नूद थी, एक्यूरेट ड्रामा, अच्छा लगा ना सबको, फायदा हुआ ना, हमको भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं हम विदेश में आए, हम तो अपने परिवार में आए हैं। ओम शांति।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे।